भाई वो बहनों, नए फाइनेंशियल ईयर में हम लाए हैं आपके लिए नए सब्सक्रिप्शन प्लान्स। इसमें नेशनल प्लान्स हैं, इंटरनेशनल प्लान्स हैं। देखिए, हम यूट्यूब का ज्वाइन बटन उपयोग में नहीं लाते हैं, इसलिए हमने ये सब्सक्रिप्शन प्लान्स बनाए हैं जिनसे हम एक कॉर्पस फंड बना रहे हैं जो हमारे राष्ट्रीय और हिंदू हितों में काम लिया जाएगा। और इसमें नेशनल प्लान्स आरम्भ होते हैं 100 रुपये से और इंटरनेशनल प्लान्स आरम्भ होते हैं $5 से। इनके सबके डिटेल्स विस्तार से आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए और क्लिक कीजिए। साथ ही हमारे इस अप्रतिम अभूतपूर्व कंटेंट के लिए आप हमें सहायता तो करते ही हैं। ऊपर जो आपको दाहिने हाथ में टॉप पर जो QR दिख रहा है, उसको स्कैन करके हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते रहिए, जिससे हम ये अभिनव कंटेंट आपके लिए लाते रहें। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज मंगलवार है, हमारे साथ है हर्ष कुमार जी और हम चर्चा करेंगे पूरे हफ्ते की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, पत्रकारिक गतिविधियां हैं, उन पर आपका स्वागत है हर्ष जी।
धन्यवाद, नमस्कार।
मजा तो चुनाव में अब आना आरंभ हुआ है।
जी जी, और इसके लिए आप लोग जिम्मेदार हैं, राजस्थान वाले। आपने जो है मोदी जी को पता नहीं कौन सा पानी पिलाया उस दिन, कि उसके बाद जब मोदी जी शुरू हुए हैं तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं।
बिल्कुल, उन्होंने नब्ज पकड़ लिया कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने यही दुष्प्रचार सबसे अधिक किया था और सबसे अधिक राजस्थान में किया था। और ये दुष्प्रचार उन्होंने किया था SC ST में, इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पर और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, ये तीन स्थान ऐसे हैं जहां पर यदि ये SC ST को भ्रमित कर लें तो फायदा कांग्रेस को होता है। उत्तर प्रदेश में कोई फायदा होता नहीं।
सही।
उत्तर प्रदेश में यदि करेंगे भी तो फायदा बसपा को हो जाएगा, और वैसे भी वहां कांग्रेस की कोई दम नहीं है, कांग्रेस के साथ कोई है नहीं है। राजस्थान का जो SC ST अधिकारी वर्ग है वो पूरी तरह से इस कांग्रेस के साथ लग के उसने ये पूरा दुष्प्रचार किया था, जो कि समाचार मोदी जी के पास पहुंच गया लगता है।
सही कह रहे हैं आप, इसलिए राजस्थान से उन्होंने इसकी शुरुआत करी।
शुरुआत करी और लगातार कायम है। आज भी उन्होंने जो है वो आज पूरा आरक्षण वाला मसला लिया है और बता दिया कि किस तरह से आरक्षण जो है SC ST का और उसका कम करके और ये मुसलमानों को देते रहे हैं। और अभी भी पूरा इनका जो प्रयास है वो इस तरह से है कि SC ST जो है वो कन्वर्शन के बाद भी उनको आरक्षण जो है, जो कन्वर्टेड नहीं है उनको भी आरक्षण दे दिया जाए, उनको भी SC ST बना दिया जाए।
ये तो है ही। और ये तो मैंने इस बारे में जब स्टडी की तो मैंने तो दो तीन वीडियो बना लिए इस मुद्दे पे। तो उसमें मुझे ये पता लगा कि जो NSC की मीटिंग हुई थी सोनिया गांधी की अध्यक्षता में, तो बताया है कि उसमें स्पेशली लिखा गया था कि मनमोहन सिंह को यह बयान देना है, वो जो अल्पसंख्यकों वाला बयान दिया था 2006 में, कि माइनॉरिटीज का जो है उनका हित जो है वो सुरक्षित नहीं रहता, उनको उनका हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये तो एकदम प्लानिंग थी इनकी पूरी उस समय की, बिल्कुल एक यही करने की। अब वो नहीं बन पाई बात, मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर तो काफी मोदी जी ने इसमें आक्रामक रुख अपनाया है। और देखिए, मुझे तो थोड़ा सा एक चीज और भी लग रही है कि अगले दो जो राउंड है, दूसरा और तीसरा जो चरण है, इसमें मैंने कुछ सीटें भी देखी थी कि कर्नाटक की तो 28 की 28 सीटें इसमें निपट जाएंगी, 14 एक बार में, 14 एक बार में, और महाराष्ट्र की 19 सीटों पे होगा इन दो राउंड में, और यूपी की 18, एक 8 और एक 10, दो राउंड ये होंगे। तो मैं सारी की सारी बैठ रहा, वेस्ट बंगाल की 7 सीटें हो जाएंगी। मैं ये भी देख रहा था कि ये सारे इन सब में जो है मुस्लिम बहुल इलाके बहुत हैं अगले दो राउंड में, ये बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा इस बारे में। इसमें रिएक्शन भी होगा और काउंटर रिएक्शन भी होगा। मुझे लगता है कि अगले दो राउंड जो है मतदान का प्रतिशत मुझे लगता है कि बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
हाँ, क्योंकि गर्मी आ गई है ना, बिल्कुल चुनाव में चुनाव गर्म कर दिया है।
अभी लोग जो है ना पूरी तरह से वो नींद में पहला राउंड निकल गया होगा लोगों का, वो पता ही नहीं लगा। बहुत से लोग हमने अपनी जब सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली कि साहब हमने भी वोट डाल दिए, तो लोग हमारे से पूछ रहे कहने लगे यार आपके यहाँ तो 25 मई में है। मैंने कहा भाई हमारा वोट तो यूपी में है, हमने तो डाल दी वोट। तो लोग बड़ा एक झटके में लगता है ना कि यार अच्छा हमारे यहाँ तो वोट ही नहीं हुआ और 102 सीटों पे हो गया। और मैं अगले जितने भी राउंड देख रहा हूँ किसी में भी 100 से ऊपर सीटों पे नहीं है, किसी में 90 है, किसी में 97 है, किसी में 89 है, इस तरह का है। ये पहला ही राउंड जो है
मुझे लग रहा है जिसमें केवल 49 है।
हाँ जी जी सही कह रहे हैं आपके, तो उसमें तो बहुत कम है। तो ये बड़ा बड़ा राउंड था और ये शुरू में हुआ, पता नहीं इसके पीछे प्लानिंग क्या थी, किस तरीके से थी। कुछ सीटों पे तो इसमें चुनाव होना भी नहीं चाहिए था, जैसे कि ये उत्तर प्रदेश में पीलीभीत वाली सीट थी, इसमें पिछली बार थर्ड राउंड में हुआ था वो। अब की बात वरुण गांधी को फंसाने के चक्कर में उन्होंने पहले राउंड में डाल दिया उसे। वो पीलीभीत किसी भी हिसाब से वेस्ट यूपी की सीट नहीं मानी जाती, अगर आप देखेंगे वो भौगोलिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे उधर पहुंच जाती है।
बरेली के साथ में आता है उसका नंबर।
हाँ बरेली के साथ में आता है, दूसरे या तीसरे राउंड में आता है उसका नंबर। अब वो वरुण गांधी को फंसाने के चक्कर में के साथ, या वरुण गांधी को ये तय करना था उसे रोक, पहले तो उसका टिकट होल्ड पे रखा, वो इंतजार करता रहा कि मेरा टिकट होगा, मेरा टिकट होगा। मम्मी का तो डिक्लेयर हो ही चुका था तो उसे लगा कि मेरा भी टिकट हो जाएगा, और उसे बिल्कुल उन्होंने ये होल्ड करके रखा कि भाई अगर तुम्हें कहीं जाना है तो चले जाओ पहले ही, क्योंकि पहले ही राउंड में फिर नामांकन करने लायक भी नहीं रहोगे कहीं। वरना मैं बताता हूँ, अगर वो दूसरे या तीसरे राउंड में रहा होता तो हो सकता है कि कुछ और डिसीजन लेता, निर्दलीय चुनाव लड़ने का, किसी पार्टी में जाने का, टीएमसी से सिंबल लेने का, अखिलेश से बात करता, कहीं ना कहीं बात करता, लेकिन वो उसे छोड़ा ही नहीं। तो थोड़ा सा इस बार चेंज हुआ है और मुझे लगता है कि ये सब चीजें रणनीतिक थी। देखिए पहले वाले राउंड में जो है लोग ये कह रहे हैं कि साहब बड़ा कम मतदान हुआ है, और इधर हमारे वेस्ट यूपी में तो कैराना वगैरह कई सीटें ऐसी हैं जिसमें मुस्लिम सीटें, मुस्लिम वोट काफी परसेंटेज में है। तो एक चीज और भी निकल के सामने आई है संजय जी कि वोटिंग परसेंटेज ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुओं ने ही वोट नहीं डाली है, मुस्लिम इलाके परसेंटेज डाउन है, ओवरऑल ही उसका प्रभाव पड़ा है। और जैसी हमारी बात भी हो रही थी कि शादियों का सीजन था, देखिए 17 तारीख में शादियां बहुत थी, 18 में थी, 19 में जिस दिन मतदान हो रहा था मुझे शाम को एक शादी अटेंड करनी थी, फिर मुझे 21 में एक शादी अटेंड करनी थी, एक पत्रकार साथी हमारे उनके यहाँ बेटी की शादी थी। तो लगातार शादियों का सीजन था। अगर आप समझिए कि 21 तारीख को किसी के घर में शादी है तो 18, 19, 20 वो तीन दिन इंगेज है, वो बिजी है, तो वोट वो भी नहीं डाल पाया। उनके रिश्तेदार जो घर में आए हुए वो भी वोट नहीं डाल पाए, अगर डाल भी पाए तो घर में 5 वोट है तो पता लगा 2 डाले आए, गए स्कूटी पे और वोट डाल के आ गए अपना, फिर काम में लग गए, घर की महिलाएं नहीं जा पाई कई जगह पर, तो इसका भी फर्क पड़ा है। तो अब मुझे लगता है कि
तो आपको राउंड में बढ़ेगा। राजस्थान में जो ब्याह शादी का जो माहौल होता है वो आपको बता सकता हूँ, गांवों में विशेषकर जो आपके जो समाज हैं, जो बड़े समाज हैं, विशेषकर आपके SC ST में, वहाँ तो शादी एक ऐसा उत्सव होती है कि यदि गाँव में एक शादी भी हो तो पूरा गांव एंगेज हो जाता है उसमें।
हाँ जैसे यूपी में कहते हैं ना चूल्हा नोत
तो वो चूल्हा नोत होती है पूरे गांव की। तो इसलिए मैंने चेक करवाया था, जैसे मैं था भरतपुर में बड़ा सूचना आई थी कि साहब भरतपुर में थोड़ा एडवर्स जा रहा है, वोट बहुत कम हुआ है इत्यादि इत्यादि। तो जो भी क्षेत्र में पता कराया तो वहाँ पता करा कि जो वहाँ जाटवों के गाँव है उनमें तो 40% ही पोलिंग हुई है। वे 40% हुई कि साहब सबसे ज्यादा तो शादी का माहौल वही होता है। जाटवों के गांवों में, मीणाओं के गांवों में, इनके यहाँ तो सबसे ज्यादा शादी का उत्सव होता है। तो अब जो पूरा जो है वो कम तो इस कारण हुआ ही है, दोनों तरफ से कम हुआ है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने मेव वाले गांवों में भी चेक करवाया था तो मेवों के भी 2 कारणों से उनका भी जो परसेंटेज है वो कम है। और एक तो जो है थोड़ी सी उदासीनता तो है, पूरा का पूरा जो है वो हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम वोटर है वो थोड़ा सा हल्का सा डिमोरलाइज तो है, वो इतने उत्साह से और इतने कमिटमेंट से वोट नहीं डाल रहा, एक बात। और दूसरी बात ये है कि विशेषकर राजस्थान में इन्होंने विशेष प्रबंध किए थे कि फर्जी वोटिंग नहीं होने पाए। तो फर्जी वोटिंग नहीं होने देने के कारण भी डाउन हुआ है। आप देखिए कि जो मुस्लिम मेव जो गाँव है राजस्थान में, जो 3-4 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी लगती है ना, कामा है, नगर है, रामगढ़ है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं इसमें वोटिंग डाउन है, तो ये कारण तो हुआ ही है।
बिल्कुल सही
अब ये जो नया डायरेक्शन लिया है मोदी जी ने, आपको क्या लगता है अब आगे क्या होने वाला है चुनाव जो है?
देखिए जैसे हम अभी चर्चा कर रहे थे कि मुझे लगता है कि मतदान का प्रतिशत तो सुधरेगा, और बैक ऑफ द माइंड मोदी जी का ये भी चल रहा होगा कि मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ है, और जो इसे लेके नैरेटिव यहाँ ये जितने भी ये कम्युनिस्ट हैं, योगेंद्र यादव एंड पार्टी, योगेंद्र यादव आपको बता दूं कम से कम 6-7 चैनल पे जा चुका है उसी दिन से, और उसने ये पूरा नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की है कि जो मतदान प्रतिशत कम हुआ है इसका नुकसान बीजेपी को ही है। वो ये बोल रहे हैं कि सब जगह मतदान प्रतिशत कम हुआ है। अब आप बताइए कि कनी मोजी जहां से चुनाव लड़ रही है डीएमके की, वहां 10% कम हुआ है पिछली बार से मतदान, तो वहां बीजेपी का नुकसान कैसे हो गया? और आपको बताऊं जहां से अन्ना मलाई लड़ रहा है कोयम्बटूर से, मैंने वहां का चेक कर लिया, वहां 1% बढ़ा है पिछली बार से ज्यादा। तो वोटर जिसे लग रहा है कि मुझे अपने अपने इस बंदे को जिताना है, वो वोट डाल के आ रहा है जरूर। अब आपका वोटर घर से नहीं निकल रहा तो इसमें कोई क्या कर सकता है? कई 3-4 सीटों का मैंने एनालिसिस किया, वो जो मुरुगन वाली सीट है उसमें भी मतदान प्रतिशत बढ़ा है, वहां पे भी बढ़ा है। तो 3-4 सीटों का तो मैंने एनालिसिस किया था कि आप तमिलनाडु में चलिए, आप ये मान लें कि जो ये जिसे ये काऊ बेल्ट बोलते हैं कि साहब यहाँ पे सब जगह मतदान प्रतिशत गिरा है, आपके डीएमके में भी तो गिरा है, वहां पे भी तो गिरा है, तमिलनाडु में भी, तो फिर वहां क्या हुआ, वहां किसके खिलाफ लहर है? तो इस तरह का नैरेटिव बनाने लगे हैं लोग बाग, और मतदान प्रतिशत गिर रहा है, ये हो रहा है, और अब इसके बाद ये कहना शुरू कर दिया है कि साहब अगर मोदी जी को 400 पार वाला भरोसा इतना ही था तो फिर इस तरह का बयान देने की क्या जरूरत है, जबकि सब लोग जानते हैं कि इस बयान से कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं।
ये तो आपने विनोद कापड़ी ने बोला है।
सब लोग कह रहे हैं, विनोद कापड़ी तो फॉलोअर है, उसे ऊपर से जो टिप मिलती है वो तो उसी पे चलता है, तो वो तो जिस तरह से ऊपर से नैरेटिव एक चलाया जाता है। देखिए यहाँ पे नैरेटिव चलाने वालों में जो सरगना है ना दिल्ली में, उनमें योगेंद्र यादव जैसे लोग हैं, ये जाते हैं दूसरे चैनलों पे जाते हैं, इन्हें देखिए बड़े जो चैनल हैं उन्होंने तो लेना बंद कर दिया, ये आज तक वगैरह इंडिया टीवी, NDTV या News18, रिपब्लिक, ये तो दिखाते नहीं है उसको। अब वो जाता है कहाँ, अजीत अंजुम के चैनल पे, या जाता है द वायर पे जाता है, न्यूज लॉन्ड्री, ये सब इन सब पे जाता है, तो वहां पे उसने ये कहानी बनाई है कि साहब वोटिंग परसेंटेज गिर गया है और 400 अगर मोदी जी को आ रही थी तो फिर ऐसा करने की जरूरत क्या थी। इन्होंने ये तो एक और नैरेटिव भी चला रहे हैं कि राम मंदिर का कोई प्रभाव नहीं है कहीं भी, राम मंदिर का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखिए अब की बार तो राम मंदिर बन गया, वो जो एक वो वेग जो दिखाई देता था, एक जोश दिखाई देता था कि मंदिर नहीं बना है, मंदिर नहीं बना है, वो बात तो सही है, वो तो अब नहीं रहा क्योंकि मंदिर तो बन गया है। अब तो जो भी चीज है अंडर करंट है, तो उसे ये भी नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब नहीं नहीं राम मंदिर वाले का कोई प्रभाव नहीं है, हाँ बस मतदान प्रतिशत जो कम हुआ है वो बीजेपी का मतदान प्रतिशत कम हुआ है। ये भूल गए हैं कि लोग इन्हें विपक्ष वालों को वोट ही नहीं डालना चाहता कोई, कई सीटें ऐसी हैं, मैं आपको बताता हूँ सबसे बड़ा उदाहरण, हमारे वेस्ट यूपी में तो पूरा बवाल मचा ठाकुरों वाला, संगीत सोम और ये संजीव बालियान के खिलाफ कई गाँव में बड़ा बायकाट हुआ। मेरे एक मित्र हैं शामली में, एडवोकेट हैं राठौर साहब, वो ठाकुर ही हैं, मेरी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब मोदी को दे गए हैं वोट, लेकिन वो बता रहे थे कि हमारे गांव के कुछ हमारे भाई बंधु थे जो इन बहिष्कार करने वालों में शामिल थे, वो वहां जा रहे थे तो उन्होंने कहा अपने घर में आके कि भाई ये वोट डालना है और मोदी जी के अगेंस्ट डालना है, तो कह रहा है कि उनके घर की महिलाओं ने मना कर दिया कि नहीं हम तो फूल को दे के आएंगे, कि ये हाल था इन लोगों का। वो कह रहे कि पति देव जाल डाल रहे हैं सपा वाले को और जो पत्नी है वो जाके अंदर वो कमल के फूल पे डाल रही है।
नहीं उसका तो मुझे तो नहीं लगता कि उसका कोई विशेष इम्पैक्ट आया है, मैंने और भी सभी जगह से पता किया और वो
केवल एक विधानसभा सीट है संजय जी, सरधना, जहाँ पे
सरधना में,
हाँ 24 सी है जो ठाकुरों की, उसमें 3 या 4 गाँव में जो खेड़ा गाँव जहाँ पंचायत हुई थी ना उसके आसपास के जो 3-4-5 गांव हैं उनमें कम हुआ है, और उनमें भी ऐसा नहीं है कि कम हुआ है तो वो जाके सपा को मिल गया है, वो एक तरह से नोटा समझ लीजिए आप उसे कि वो इधर भी नहीं गया उधर भी नहीं गया, उतना नुकसान हुआ है, इस तरह का नुकसान है। बाकी उधर देवबंद वगैरह में जहां बहुत सारे ठाकुरों के गाँव है, सहारनपुर में बहुत बढ़िया पोलिंग हुआ है, अच्छा मतदान हुआ है, कहीं कोई बहिष्कार नजर नहीं आया।
बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अब सेकंड राउंड में क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में?
सेकंड राउंड में ठीक ठाक लग रहा है, क्योंकि सेकंड राउंड में तो ये अलीगढ़ है, बुलंदशहर है, मथुरा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत है नहीं, मुझे लग नहीं रहा।
पहले वाले थोड़ी स्थिति कमजोर लग रही थी तो अलीगढ़ में प्रधानमंत्री हुआ।
अलीगढ़ में क्या है संजय जी, वो जो वहां का सांसद है ना सतीश गौतम, उसके उसकी बड़ी खिलाफत है थोड़ी सी, थोड़ा सा व्यवहार को लेकर भी उसके साथ दिक्कतें हैं। तो उसकी तो चर्चा पहले ये थी कि टिकट उसका कटेगा, अब पता नहीं क्यों फिर बाद में टिकट दे दिया इन्होंने आखिरी टाइम में। यूपी में 30-31 टिकट ऐसे हैं जो लोगों को उम्मीद थी कि ये कटेंगे और वो फिर हो गए, रिपीट हो गए। तो अलीगढ़ वाला भी उनमें से एक है। अलीगढ़ में तो बड़े मोदी जी बड़े जोश खरोश से बोल रहे हैं, अमरोहा में, अलीगढ़ में, कल ही बोल रहे हैं सोमवार में ही।
अमरोहा भी टाइट मानी जा रही थी तो अमरोहा भी हुआ है। तो ये तो मैं देख रहा हूँ कि कम से कम प्राइम मिनिस्टर का जो फीडबैक सिस्टम है वो पूरी तरह से काम कर रहा है,
बिल्कुल परफेक्ट है, और उन्हें पता है कि कहाँ के समीकरण क्या है जी, पूरा आइडिया है,
एविडेंस है कि जो इन्होंने मैटर टेकअप किया है, अब जो राजस्थान से आरंभ किया, अलीगढ़ में कंटिन्यू किया, आज फिर राजस्थान में टोंक वाली सीट पे उनियारा में थे, आज फिर उसी को कंटिन्यू किया। तो फीडबैक सिस्टम इनका परफेक्ट है, इनको पूरा फीडबैक मिला हुआ है कि क्या जो है अंदर खाने और नीचे नीचे किस तरह का नैरेटिव चलाया जा रहा है, उस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। अब कांग्रेस के सामने ये समस्या है कि आज जो इशू उठाया, आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस ये कमिटमेंट दे कि एससी एसटी का रिजर्वेशन काट के मुस्लिमों को नहीं देगी, अब कांग्रेस इस पर क्या कर सकती है।
राहुल गांधी ने तो कह दिया कि हम 50% वाली कैप ही बढ़वाएंगे, राहुल गांधी तो अपना मैनिफेस्टो ही नहीं पढ़ा राहुल गांधी ने, मुझे तो लग रहा है खड़गे जी जो ये चैलेंज कर रहे हैं, मोदी जी से अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं मिलने का, उन्हें सबसे पहले तो कान खींचने चाहिए पी चिदम्बरम के, जिन्होंने मैनिफेस्टो बनाया, कि आपको ये इसमें पॉइंट डालने की जरूरत क्या थी। और वो बिटवीन द लाइन है संजय जी, कोई नहीं पढ़ पाएगा, पता नहीं वो प्रधानमंत्री का जो आप कह रहे हैं कि फीडबैक सिस्टम इतना बढ़िया है, जो उनकी टीम है उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से उस पर नैरेटिव बिल्डअप किया है, वो जो लाइन डाली ना कि सोशल इकोनॉमिक सर्वे उसके आधार पे वो करेंगे हम, वेल्थ का जो सर्वे होगा, तो उसमें से बिटवीन द लाइंस कहते हैं ना कि उसमें से शब्द निकाल लेना, वो इतनी खूबसूरती से निकाल दिए हैं कि उसका कोई जवाब ही नहीं है इनके पास। अब ये प्रधानमंत्री से अपॉइंटमेंट मांग रहे खड़गे जी समझाने के लिए, अरे भाई पहले राहुल गांधी को तो समझा दो कि उसमें उसका मतलब क्या है जो लिखा हुआ था। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो ऐसा कर देंगे खटाखट 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 पैसे आ जाएंगे, और
कि आप खाली बैठ के फेसबुक और रील्स बनाओ इंस्टाग्राम पे रील बनाओ आप तो, और आप खटाखट जो है वो पैसे आते जाएंगे।
अच्छा संजय जी एक बात बताइए, ये इलेक्शन कमीशन में गए इसके खिलाफ, रवीश कुमार ने वीडियो बनाया है, ट्विटर पे लिख रहा है कि साहब चुनाव आयोग नाम की कोई चीज है कि नहीं, चुनाव आयोग ये सब चीजें देख रहा है या नहीं। आप ये बताइए कि पिछले 10 साल से इस देश में सबसे बड़ा झूठ जो है वो राहुल गांधी बोलते रहे हैं, उनके खिलाफ कोई किसी ने कभी कहा है क्या? राहुल गांधी ये कहते रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि आपके अकाउंट में 15 लाख रुपए आ जाएंगे, उससे बड़ा झूठ है क्या कोई? कितना बड़ा झूठ है कि आपके अकाउंट में आए क्या, बताइए कहीं का, आप इसका कोई प्रूफ दीजिए कि कहीं मोदी ने यह कहा हो कि आपके अकाउंट में हम 15 लाख रुपए डलवाएंगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि ब्लैक मनी इतनी है, अगर वो वापस आ जाए सारी की सारी तो 15 लाख रुपए पर हेड इस देश में आ सकते हैं वापस। उन्होंने एक तुलनात्मक बात कही थी, एक एवरेज की बात कही थी, और ये उसको आज तक ये
कैपिटा वो 15 लाख रुपए हो जाएगी ये कहा था।
बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने कि उनकी जो है आमदनी 15 लाख पहुंच जाए, तो ये बात कही थी उन्होंने, और आज तक उसी पे किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में बोलते हैं ये लोग कि साहब 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आए हैं। क्या ममता बनर्जी भी बोलती हैं, सारे विपक्ष वाले बोलते हैं, कितना बड़ा झूठ है।
हाँ तो इसलिए तो ये जो खलबली मची है और जो हल्ला गुल्ला मचा रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर ने ये सब कह दिया वो कह दिया, तो ये इसमें आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से जो इनका ऑब्जेक्शन है वो सस्टेनेबल नहीं है?
नहीं बिल्कुल कुछ नहीं है, और इस सस्टेनेबल बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अवॉइड करने लायक ही है, कुछ नहीं होगा। और अब मुझे लग रहा है कि अब होगा ये कि अगले कुछ जो चरण होंगे उनमें मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, और इसमें ये बैकफायर करेगा कांग्रेस वालों को, नुकसान होगा इसका। और जो मोदी जी ने वो जो असली एक शब्द होता है ना स्त्री धन, कल से तो मोदी जी ने वो यूज करना शुरू कर दिया कि ये स्त्री धन लूटने के चक्कर में है, और समझ लीजिए बस महिलाएं तो मोदी जी की तरफ हैं, बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं, मंगल सूत्र, स्त्री धन, जब इस तरह की बातें कह देते हैं तो कोई बच नहीं पाता, ये फिर अंडर करंट होती है सारी चीजें, फिर सामने नजर नहीं आएंगी, ये हो जाएंगी, दिक्कत नहीं होगी कुछ भी मोदी जी को।
आप मानते हैं कि चुनाव सेट कर दिया मोदी जी ने?
नहीं, बिल्कुल सही बात है, और मुझे लगता है कि ये पहले पहले राउंड्स का जो फीडबैक है उस सब से जो चीजें आई हैं निकल के, उसके बाद ही ये प्लानिंग तरीके से किया गया है। मैंने जैसे आपको बताया कि अगले जो दो राउंड हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं, वेस्ट बंगाल, आपके राजस्थान में, कर्नाटक में, यूपी के भी दो, ये बड़े महत्वपूर्ण राउंड हैं अगले वाले, तो उनके हिसाब से भी ये नैरेटिव बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया बढ़िया होने वाला है अगले दो राउंड में। और संजय जी, ये नैरेटिव बना रहे हैं कि 102 सीटों पे जो कम मतदान हुआ है उसमें बीजेपी का नुकसान कैसे है, आप बताइए नुकसान कैसे है? पिछली बार 43 सीट थी, अब तो बता रहे हैं कि 65 आ रही है इनमें से, ये तो पहले राउंड में 25 बढ़ गया।
65 तो मैं नहीं कहता, लेकिन मिनिमम 55 तो है ही।
आप मुझे लग रहा है सबसे आप अपने राजस्थान को लेके इस बार जो है डाउटफुल हैं, मुझे लग रहा है।
यदि आपने ओपिनियन पोल देखा हो तो मैंने ओपिनियन पोल में आरंभ से ही मैं 20 सीट लेके ही चला हूँ, मैं 25।
हाँ, आपने 5 का पहले वाले में कम दिखाया था,
तो वो 5 तो मैंने अपने ओपिनियन पोल में ही कम दिखाया था। और अभी जो चुनाव हुआ है उसके बाद से जो मेरे पास जो ग्राउंड रिपोर्ट्स आ रही है उसमें यह है कि एक सीट झुंझुनू की तो निश्चित रूप से हार गई है बीजेपी, और उसके अतिरिक्त दो सीटें टाइट हैं, दौसा और भरतपुर।
नागौर क्लियर है?
दो सीटें टाइट है, नागौर तो क्लियर है मेरे हिसाब से, तो नागौर में समस्या नहीं है, और कहीं भी थोड़ी सी
नहीं तो ये झुंझुनू में समस्या
मार्जिन कम हो सकती है।
झुंझुनू में क्या है मेन, क्या रहा झुंझुनू में रीजन, क्या लगता है आपको क्यों?
कैंडिडेट,
अच्छा
कैंडिडेट जो है उसने क्या है कि कई मेजर कम्युनिटीज को पूर्व में गालियां दे रखी हैं, जैसे राजपूतों को गालियां दे रखी हैं और आपके मालियों को गालियां दे रखी हैं, वहाँ पे राजपूत माली वहाँ जो है, जाटों के बाद में सबसे बड़े जो कम्युनिटीज हैं वो यही दो हैं।
ये गहलोत वाले जो हैं?
हाँ गहलोत वाले।
अच्छा अच्छा,
माली ओरिजिनली वोटर बीजेपी का है, विधानसभा में जब तक गहलोत रहते हैं तो विधानसभा में गहलोत की तरफ थोड़ा इंक्लाइंड होता है, लेकिन मूलतः वोटर तो वो बीजेपी का ही, आज भी तो लोकसभा में बीजेपी को वोट देता है, और लोकसभा में गहलोत का कहने से चेंज भी नहीं होता। तो ये जो है ना वो अच्छा, उसका कुछ क्रिमिनल एंटीसिडेंट भी है कैंडिडेट का, तो वो कैंडिडेट सिलेक्शन जो था वो बड़ा पुअर था, उसकी वजह से मोदी की अपील भी वहाँ फीकी पड़ गई।
तो मतलब पहले जो 14 सीट जहाँ आपके यहाँ 13 पे हुआ है, अभी कितनी सीट पे हुआ है? 12 पे,
12 पे हुआ,
12 पे हुआ है, तो उसमें एक सीट टाइट है आप मान रहे हैं झुंझुनू वाली?
नहीं, झुंझुनू तो
गई
100% गई।
अच्छा,
झुंझुनू तो 100% गई, हालांकि ये बात है, मैं ये कहूंगा एक बात, इसमें एक कैवियट है, क्योंकि वो क्या रहा है कि आज भी आप देखेंगे तो जितने भी आपको एक्सपर्ट्स दिखाई पड़ रहे हैं और जो विश्लेषण कर रहे हैं वो अभी भी जातिगत आधार पर कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि भाई आप ओबीसी, एससी, एसटी इन कम्युनिटीज में से 20% आप अलग रख दो, वो 20% निकाल के फिर आप, वो 20% वोट मोदी का है, उसको अलग रखने के बाद में उसके बाद आप विश्लेषण करो,
ये बाकी में देखो कौन कहां जा रहा है,
ये मेरा मानना है। तो वो जो है ना वो मोदी, वो 20% से आरंभ होता है हर स्थान पर, विशेषकर नॉर्थ इंडिया में। तो लोग जितने भी हैं वो बेसिक से वही पुराना, वही जाति का जोड़ घटाना जोड़ घटाना। तो मोदी ने जातियों को एक प्रकार से, इसमें मोदी सफल हुआ है जातियों को तोड़ने में।
हाँ ये तो है, काफी हद तक सफलता मिली है सभी जगह पे,
सभी जगह मिली है। और चूंकि वो स्वयं ओबीसी है तो ओबीसी में एक नेचुरल अट्रैक्शन भी रहता है कि भाई ये मोदी जो है वो अच्छा, वो ऐसा है नहीं कि वो पॉलिटिकल सीजन में तो उसको बात करनी ही पड़ेगी, जो हमारी पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें एससी एसटी ओबीसी की, जो ये सोचते हैं कि वो एससी एसटी ओबीसी की बात ना करे, उनको ये देखना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरह से गंदगी फैलाई यहाँ पे नीचे पहले, तो उस गंदगी का प्रतिकार ना करें, चुपचाप चुनाव हार दें।
हाँ, जैसे चल रहा है चलने दें,
जैसे चल रहा है चलने दें। ये अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, कांग्रेस को समझना चाहिए। यहाँ पर कांग्रेस जो तीर छोड़ेगी वो दुगने वेग से वापस आएगा उनको, और उनको लगेगा।
हाँ, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया होगी यहाँ तो।
हमारे वाजपेयी जी ने तो सब कुछ छोड़ दिया और आराम से, वो तो शाम को मस्त हो जाते थे, आपको पता है, 5 बजे के बाद।
हाँ, वाजपेयी जी के बारे में तो उन पर्सनैलिटी में तो बहुत डिफरेंस है।
वाजपेयी जी की चुनाव में जो उनकी जो एक्टिविटी थी वो चेक कर लीजिए, कभी उन्होंने दिन में एक सभा बहुत कर दी तो 2 सभा, इससे अधिक नहीं। मोदी तो 4-4, 5-5 एक दिन में करता है, और लगातार, ये भी नहीं कि एक भी दिन कोई ब्रेक हो जाए।
हाँ, और बीच बीच में जो है ये कार्यक्रम भी करते रहते हैं कि वो पद्म पुरस्कार भी हैं, फला पर कार्यक्रम है, वो आरबीआई के कार्यक्रम में चले जाते हैं, ये भी तो करते रहते हैं बीच बीच में। वहां पे भी कुछ ना कुछ जो है वो अपनी कहानी जरूर इस तरह की बना देते हैं कि बैंक वालों को, जैसे अभी आरबीआई के प्रोग्राम में गए थे, वहां पे ये कह दिया कि साहब बैंक वाले तैयार रहे, कड़े कड़े डिसीजन हम लेने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर को लेके। तो मोदी तो अपना वो कंटिन्यू कर रहे हैं, और उन्होंने वहां पिछले दिनों एक मीटिंग बुलाई थी चुनाव से पहले, और सारे जितने ये बैंक वाले थे इन सबको कह दिया था कि ये मत सोचना कि हम छुट्टी पे जा रहे हैं 1.5 महीने की, काम चलता रहना चाहिए उसी स्पीड से, क्योंकि उन्हें तो कॉन्फिडेंट है कि वापस आना है। अधिकारी भी समझ रहे हैं कि भाई आना है, जवाब देना है, तो ये उन्होंने कह दिया कि ऐसा ना हो कि आप छुट्टी लेके कहीं चले जाएं, प्लानिंग बना रखी है उन्होंने पूरी।
अब ये दूसरे और तीसरे फेज में एक और भारी समस्या आ गई है कांग्रेस को, और वो जो है ये जो लव जिहाद वाला मामला हुआ है कर्नाटका में, उसके कारण कर्नाटका में जो थोड़ी बहुत इनकी 5-6 सीटें लाने की सोच रहे थे उसको बहुत झटका लगा है। और जो मैं फीडबैक ले रहा हूँ कर्नाटका से, तो कर्नाटका से लोगों का कहना है कि भाई उसके बाद बदलाव तो आया है उस घटना के बाद। साथ में आप ये देखिए कि एक और घटना हुई है, इन दो घटनाओं का पूरे साउथ पे, महाराष्ट्र पे बहुत असर पड़ने वाला है। एक तो ये लव जिहाद वाली घटना हो गई, दूसरी जो घटना हुई है वो साउथ गोवा का जो कांग्रेस कैंडिडेट है, क्रिश्चियन है, वो कह रहा है कि साहब कि ये तो हमें तो ड्यूअल सिटीजनशिप चाहिए, हम तो, हमारे ऊपर तो संविधान थोपा गया है जबरदस्ती, और हम तो पोर्चुगल के सिटीजन हैं, तो हमको तो ड्यूअल सिटीजनशिप दीजिए, पोर्चुगल की और भारत की।
इसका भी कोई लोग हैं,
इसका भी कोई प्रतिकार नहीं कर रहे वो।
ऐसे ऐसे तो बहुत लोग हैं वहां, और अगर यूपीए थर्ड आया होता तो क्या पता ये भी हो जाता, ड्यूअल सिटीजनशिप भी हो जाती शायद, ऐसा भी हो जाता।
अब वो तो सब चीजों को रिमाइंड किया जा रहा है। अब आप ये देखिए कि दिलीप मंडल जैसे लोग जो हैं वो भी तो आजकल कांग्रेस के विरोध में चले।
दिलीप मंडल तो जो है ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं।
दिलीप मंडल ने इनका पूरा नैरेटिव ध्वस्त कर दिया रिजर्वेशन वाला।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बिल्कुल निकाल गए कि वही तो बता रहा था मैं आपको कि वो जो एनएसी की बैठक थी कि उसमें सोनिया गांधी ने कहा था मनमोहन सिंह से कि आपको ये बोलना है अल्पसंख्यकों के बारे में, इस तरह का नैरेटिव आपको बनाना है जाके। आपको याद होगा कि 2009 के चुनाव से पहले 2008 में जो है इन्हें कांग्रेस वालों को गलतफहमी है कि वो मनमोहन सिंह ने जो वो बयान दिया था उसकी वजह से जो है यूपीए 2 में ज्यादा सीटें आ गई थी इनकी। ये भी उस गलतफहमी में है कि उसकी वजह से आ गई थी, जबकि उसकी मेन वजह ये थी कि जो कल्याण सिंह, मुलायम सिंह, ये वाला जो हुआ था यूपी में, जो इनकी सीटें बढ़ गई थी 30-31, 20-22 के करीब सीटें ज्यादा आ गई थी, ये तो उसकी वजह से कहानी हुई थी। जब कल्याण सिंह उधर वो मुलायम सिंह यादव की तरफ चले गए थे और वो सारा नैरेटिव दूसरी तरफ चला गया था, वो उसका नुकसान हुआ था। तब ये कहानी उससे सोचते हैं कि जो 2009 में हुआ उसे इस बार फिर से रिपीट कर लेंगे, ये कहानी चलती रहेगी इनकी साहब, ऐसे ही होने वाला नहीं है कुछ इनका कुछ भी। अच्छा, केरल का क्या लग रहा है संजय जी आपको केरल में? अब केरल में होना है, राहुल गांधी वायनाड
में होना है। देखिए अब वैसे जो ये लव जिहाद वाले मामले हैं उसका इम्पैक्ट तो क्रिश्चियंस पर भी है, उनकी फैमिलीज, उनका चर्च, ये सब देख रहे हैं क्योंकि उससे वो भी उतने ही इम्पैक्ट हो रहे हैं जितने
केरल में। तो केरल वाले तो ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा, सही कह रहे हैं,
सबसे अधिक वही प्रभावित है। तो अब जो देखने को मिल रहा है, एक चर्च है वहां पर, ईस्टर्न बिलीवर्स चर्च, उसने भी अनिल एंटनी को सपोर्ट करने का कर दिया है और उसके अच्छी खासी वहां पे, कम से कम आप ये समझिए कि 10,000 फैमिली तो उस पतनमथिट्टा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें है। एक एंटनी ने अपने बेटे का ही विरोध किया लेकिन उसका कोई असर हुआ दिखता नहीं है। तो लेकिन केरला में मैं कुछ कहता नहीं, वहाँ लास्ट मोमेंट पे जो है ना, वो ये जो रहा हुआ है पिछले दो चुनावों से जो मैं देख रहा हूँ 2014-2019 में, ये दोनों में जैसे त्रिवेंद्रम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ले लें तो दोनों में बीजेपी विनिंग पोजीशन में थी, लास्ट मोमेंट पे ये आपके लेफ्ट फ्रंट ने और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया। और उनके हाथ मिलाने की वजह से जो बीजेपी का कैंडिडेट था वो हार गया। और दोनों बार जो है वो, पहली बार तो बहुत ही मामूली अंतर से आ रहा था, 15,000 से आ रहा था, दूसरी बार लगभग 1,00,000 से आ रहा। तो इस बार क्या करते हैं, इस बार जो है वो पिनरी विजयन वैसे तो खुले तौर से विरोध में आए हुए हैं, आपने देखा होगा।
हाँ, विजयन तो चाह रहे कि राहुल गांधी हार जाए,
और खुले तौर से विरोध में आ रहे हैं। उसकी मैंने विश्लेषण किया था, उसके विश्लेषण करने से मेरा अनुमान उसमें ये निकलता है कि सीपीएम की जो ओवरऑल सीट्स हैं वो बहुत कम हो गई है। 3 सीटें जीते थे ये केवल पिछली बार, जिसमें से 1 सीट थी केरला से और 2 सीट ये जीते थे तमिलनाडु। तो 2004 में लेफ्ट की 66 सीटें थी, वो 66 सीटें कम होते होते 5-7 तक रह गई। तो इनके ऊपर भी ये प्रेशर है, इनके पॉलिट ब्यूरो का भी, ये जो है ये नहीं चलेगा, आपको अपनी सीटें बढ़ानी है। और ख़ास तौर से जब आपने पूरा जो वहाँ का सिस्टम ब्रेक कर दिया, जो एक बार UDF
रिपीट हो गई सरकार आपकी,
आपने पहली बार पिछले 50 साल में सरकार रिपीट कर ली, तो कोई कारण नहीं है कि आप लोकसभा में उनको जो है वो फ्री पास दें।
सही बात है,
तो इसलिए वो इस बार अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि पूरे दमखम के साथ लड़ रहे हैं।
और ये राहुल गांधी में भी अटैक कर रहे हैं
पूरे दमखम के साथ, अगर वो पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं तो बीजेपी की सीटें आ सकती है।
हाँ बिल्कुल, अभी देखे ना वो सुभाषिनी अली है, वो कहीं बोल रही थी, मैंने पता नहीं कहां पर उसका बयान आ रहा था, वो ये कह रही थी कि ये राहुल गांधी यहाँ क्यों आते हैं, अगर इन्हें मोदी से पंगा लेना है, मोदी को इन्हें हटाना है, तो वाराणसी से क्यों नहीं लड़ते जाके उनके सामने। तो ये चीज तो यही बताती है।
अभी एक लेटेस्ट समाचार और आया है
जी,
आपको दो लेटेस्ट समाचार सुना दो
जी। जी
एक समाचार तो मेरे सामने
डिक्लेयर हो गया क्या, अमेठी रायबरेली के टिकट डिक्लेयर हो गए क्या?
नहीं, एक तो ये है कि राघव चड्ढा जो है बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं और अच्छा। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज या कल में, एक समाचार तो ये है। केजरीवाल का क्या होगा उसके बाद, उसकी भी चर्चा करते हैं। और दूसरा समाचार जो मेरे पास आया है विश्वस्त सूत्रों से, वो ये है कि राहुल गांधी जो है वो लद्दाख से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
लद्दाख में तो अभी बीजेपी वालों ने भी टिकट डिक्लेयर नहीं किया अपना, वो जो नामग्याल है उसका टिकट काट रहे हैं।
नामग्याल का टिकट काट दिया, दूसरे का टिकट दे दिया आज।
अच्छा, डिक्लेयर हो गया वो टिकट? हाँ, मुझे पता लगा था उसका टिकट कटने वाला है, क्योंकि दो तीन टिकट ये काटने वाले थे। ब्रजभूषण शरण की पत्नी को टिकट दे रहे हैं, वहां पे भी तय हो गया है मामला। उसकी वाइफ एक बार गोंडा से सांसद रह चुकी है ब्रजभूषण शरण की, तो उसकी पत्नी को टिकट दे रहे हैं उसकी जगह, ये भी खबर आई है।
अच्छा, हाँ, ब्रजभूषण शरण को तो देखिए इग्नोर नहीं कर सकते उस क्षेत्र में।
हाँ, तो वो दोनों काम हो जाएंगे ना उसमें, ब्रजभूषण का टिकट भी कट जाएगा, मतलब वो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, तो वो वाला काम हो जाएगा वहां पे। तो वो नामग्याल वाला है, हो सकता है राहुल गांधी को लग रहा हो, राहुल गांधी को बड़ा पसंद भी है वो, और चाइना से बड़ा नजदीक भी है, वो चाहे तो वहां से पैदल भी निकल सकते चाइना जाने के लिए।
ऐसी उनकी दिली इच्छा हो सकती है, मुझे लग रहा है।
हाँ, हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सही बात है। लेकिन ये रॉबर्ट वाड्रा वाली संजय जी क्या थ्योरी है, हम काफी दिनों से पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, रॉबर्ट वाड्रा क्यों कह रहा है बार बार, कभी कह रहा है कि मैं वहां से भी लड़ सकता हूँ, अमेठी से भी, रायबरेली में मैंने काम किया है, फिर हरियाणा में भी कहने लगा, रॉबर्ट वाड्रा वाली का कैसे थ्योरी, उसे क्या
उसमें मुझे लगता है कि वो उसको संभवतः वो ये सोचता है कि भाई मेरा जो ये साला है वो तो पप्पू है।
इससे कुछ नहीं होने वाला।
तो इससे कुछ नहीं होने वाला तो ये सही मौका है, मैं लड़ लेता हूं, और अगर लड़ूंगा और हार जाऊंगा तब भी वीर कहलाऊंगा, ये कहलाऊंगा कि भाई देखो मैंने जो है सामने खड़ा होके जो है वो सीने पर गोली खाई है,
शहीद हो जाऊंगा।
और हाँ तो मैं जो है वो एक वीर बलिदानी कहलाऊंगा, तो वो वीर बलिदानी बनने के लिए तैयार है वो, इसीलिए कह रहे हैं कि भाई मुझे कहीं भी लड़ा दो, मुझे रायबरेली लड़ा दो, मुझे अमेठी लड़ा दो, कहीं से भी लड़ा दो मैं तैयार। और राहुल गांधी की हिम्मत नहीं पड़ रही है, इतना कायर व्यक्ति तो मैंने देखा नहीं जीवन में, कि ये चाहता है कि साहब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है, हम जो है वो हम डरते नहीं है, लेकिन डरता इतना है कि अमेठी छोड़ के भागा हुआ है, और दोबारा भी हिम्मत नहीं हो रही है कि डिक्लेयर कर दे कि मैं अमेठी से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अमेठी से चुनाव लड़के अब करेगा क्या वो। वहां स्मृति ईरानी को 3-3 हफ्ते हो गए कैंपेन करते हुए।
बिल्कुल बिल्कुल,
स्मृति
ईरानी ने घर बना लिया वहां पे, घर बना लिया बाकायदा, पूजा पाठ करके वो वहां पे बस गई है बिल्कुल जाके।
तो इसलिए स्मृति ईरानी के विरुद्ध तो इनका कोई स्कोप है नहीं, संगठन इनका है नहीं वहां पे, जो संगठन नहीं है, स्वयं नहीं लड़ेंगे, सीट इनको जो है सपा ने दे दी है, बसपा ने अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है वहां से, इसके बाद भी नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्या।
वहां तो सब मुझे लग रहा है कि 26 तारीख के बाद ही होगा, वायनाड वाला चुनाव हो जाए, पोलिंग हो जाए 26 वाली, क्योंकि वहां 3 मई लास्ट डेट है नामांकन की, तो मुझे लगता है कि उसी का
वहां 26 मार्च से नॉमिनेशन शुरू है, 5वें राउंड में है वो। अमेठी वाली सीट लखनऊ के साथ है 5वें राउंड में,
3 मई लास्ट डेट है,
4थे राउंड में कानपुर है, 3रे राउंड में खास बरेली, 3रे राउंड में,
हाँ बरेली 3रे राउंड में, ये 4थे या 5वां राउंड बैठेगा, ये
5वें राउंड
बरेली, हाँ 5वां राउंड बैठेगा,
5वें राउंड में, 6ठे राउंड में प्रयागराज है, 7वें राउंड में बनारस, ये है इस तरह से। तो अब जो बात कर रहे थे अभी जो है राघव चड्ढा वाली बात आई, तो थोड़ी केजरीवाल की भी बात कर लें, बिना केजरीवाल की बात किए हुए पूरा संपुट पूरा नहीं होता, ये राम कथा का संपुट जो है बिना केजरीवाल ये होता है। ये जो खबर आ रही है
केजरीवाल वाला जो, जी जी केजरीवाल वाला भी एक मामला आप समझिए, कि उस दिन आप जिस दिन मोदी जी ने ये बयान दिया राजस्थान में, आप याद कीजिए उस दिन वहां रांची में वो सुनीता केजरीवाल भी बोल रही थी, ये उसी दिन से कहानी शुरू हुई है, और अब कोई पूछ नहीं रहा है सुनीता केजरीवाल और वो क्या कह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है किसी को, खत्म हो गया वो चैप्टर ही क्लोज हो गया,
वहां तो आपस में लड़ाइयां ही हो गई थी,
हाँ मारपीट खूब हुई वहां पे
रांची में, तो जम के मारपीट हुई। तो राघव चड्ढा अगर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा,
देखिए इससे कोई वैसा लाभ तो है नहीं, पॉलिटिकल लाभ तो कोई दिल्ली ऐसा कुछ है नहीं कि कहीं वोट मिल जाएंगे, वो राज्यसभा का एमपी है, वैसा तो कुछ फायदा तो कुछ इसका होगा नहीं कि आपके लिए कैंपेन कर देगा या कैसे कर देगा, हालांकि अभी जब तक वो ज्वाइन कर नहीं लेता तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि वो क्या उसकी प्लानिंग है, और डाउटफुल तो है ही कि साहब इतने दिनों से आ भी नहीं रहा है, अब तो कुछ बोलना भी प्रतिक्रिया भी देनी बंद कर दी है, पहले तो सोशल मीडिया पे ट्विटर वगैरह पे वीडियो वगैरह डाल देता था केजरीवाल के समर्थन में या कुछ, अब तो वो भी बंद कर रखा है पिछले 10-12 दिन से, कोई प्रतिक्रिया किसी तरह की आ नहीं रही राघव चड्ढा की तरफ से, तो कुछ कहा नहीं जा सकता राघव चड्ढा का। देखिए एक बात और भी है संजय जी, मेरी एक भाजपा नेता से ही बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि साहब चुनाव के सीजन में ये ज्यादा लोगों को दूसरे दलों वालों को शामिल करा रहे हैं ना, इसका इसका थोड़ा सा जो कार्यकर्ता है ना कैडर अपना, उसके मनोबल पे प्रभाव पड़ता है। कई लोगों को इन्होंने ऐसा किया है। अब जैसे वो शामिल किया वहां पे रिंकू, आम आदमी पार्टी वाला, जालंधर वाला, और वहां पे टिकट मिला है उसे चरणजीत चन्नी को कांग्रेस ने। तो मेरी कल ही बात हो रही थी, वहां पे एक रिपोर्टर है पंजाब केसरी के, बड़े सीनियर हैं वो, पॉलिटिक्स का काफी जानकारी रखते हैं। उन्होंने कहा कि साहब चरणजीत चन्नी जीत रहा है यहाँ पे, जीतेगा नहीं है रिंकू, क्योंकि इसकी इमेज ही बहुत खराब है वहां पे। तो जैसे ये ब्रजभूषण टाइप लोग हैं, इसी 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 कैटेगरी में गिनती है इसकी वहां पे। तो कह रहे कि इनकी इमेज बहुत खराब है, और ये तो शायद एमएलए का चुनाव भी पहले हार गया था, ये तो बाईपोल हुआ था, तो उस हिसाब से हो गया। बल्कि वो लोग ये कह रहे थे कि वो अभी अभी जो है उसकी वो जो बाईपोल हुआ था ना, वो जिनकी डेथ हो गई थी भारत जोड़ो यात्रा में सांसद की, संतोष चौधरी की बाईपोल हुआ था, उसी में तो जीता था ये सुशील रिंकू। तो उसमें कांग्रेस वालों ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था, और उसने अभी 2-3 दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की है। तो लोगों का ये कहना था वहां पे कि अगर वो उसकी वाइफ को टिकट देते ना बीजेपी वाले, तो वो ज्यादा बढ़िया चुनाव लड़ती और बढ़िया चुनाव होता वो। लेकिन ये रिंकू जो है इसे लाइक नहीं करते जालंधर में, लोग ज्यादा पसंद नहीं करते इसको। तो कुछ ऐसा नहीं है जरूरी कि आप किसी को भी शामिल कर लें तो लोग उससे बड़ा प्रभावित हो जाएंगे। ऐसे ऐसी कई एंट्रियां हुई हैं चुनाव के दौरान जिनका कोई फायदा है नहीं, बेकार वैसी बैगेज बढ़ा रही है पार्टी, एक तरह का बोझ ही है। तो मेरा मानना है कि राघव चड्ढा का कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई मास लीडर है कि वो आ जाएगा तो आपको फला बिरादरी के वोट दिला देगा। राघव चड्ढा अपना चुनाव हार गया था दिल्ली में, मुझे लगता नहीं कि राघव चड्ढा जैसे लोगों को कोई फायदा है, उसे लेना भी नहीं चाहिए। बाकी तो बीजेपी है, इसमें तो किसी को भी ले लेंगे, वॉशिंग मशीन चली रही है इनकी।
और आपके अजीत अंजुम जी का क्या हाल है?
अजीत अंजुम जी को साहब मैंने चैलेंज किया, संजय जी मैं आपके चैनल पे भी आज चैलेंज करता हूँ। मैं पिछले 2 हफ्ते से चैलेंज कर रहा हूँ मैं अजीत अंजुम को। मैंने गुजरात के चुनाव के समय भी उन्हें चैलेंज करते हुए एक वीडियो बनाई थी, और उसमें मैंने उनसे ये कहा था कि भाई गुजरात में आप क्यों नहीं जा रहे कवर करने के लिए, क्योंकि ये तो फील्ड रिपोर्टर हैं, वो माइक ले लेके लोगों के मुंह में घुसा घुसा के, इन्हें तो बड़ा फक्र है कि मोदी जी मेरा वीडियो देखते हैं और उस पर रिएक्शन देते हैं। तो मैंने इन्हें गुजरात के चुनाव में चैलेंज किया था, मैंने कहा भाई अजीत अंजुम जी गए नहीं इस बार, आपके घर के तो सामने से हाईवे जा रहा है गुजरात व राजस्थान वाला ये जो निकल रहा है, आप जाइए। तो अब ये 8 दिन पहले गए थे कैंपेन जब चल रहा था गुजरात में, जब वोटिंग होनी थी उससे 8 या 7 दिन पहले गुजरात गए थे अजीत अंजुम, और अब की बार तो एक भी वीडियो पब्लिक के बीच में नहीं जाके बनाया कहीं भी। इतना बड़ा चुनाव है बताइए, पहली बार लोकसभा चुनाव हो रहा है जब से इनका यूट्यूब चैनल बना है। मुझे मैं तो सोच रहा था कि ये थ्रू आउट द पूरा नेशन कश्मीर से कन्याकुमारी तक कवर करेंगे, ये तो निकले ही नहीं है घर से। तो मैंने फिर वीडियो अभी ये बनाया था पिछले दिनों, बड़े लाखों लोगों ने देखा, जिसे बड़ा पसंद किया। उसमें मैंने कहा था कि भाई अजीत अंजुम जी का अब की बार ये लग रहा है कि जहां भी जाएंगे ना लोग यही कहेंगे कि आएगा तो मोदी ही, तो इसलिए तो मुझे लग रहा है कि ये
आजकल तो वो अपना कैरेक्टर डिफेंड करने में लगे हुए।
अरे साहब वो तो जो भी वो घटनाक्रम तो खैर बड़ा गलत हुआ, वो जो भी चीज है जिसने भी वो वीडियो बनाया, वो तो उस तरह का तो वीडियो किसी के भी बारे में हो उसकी तो निंदा ही की जानी चाहिए। तो आप किसी की विचारधारा की आप खिलाफत कर सकते हैं, लेकिन आप पर्सनल अटैक इस तरह का किया नहीं जाना चाहिए था, वो तो गलत ही हुआ।
पर्सनल अटैक किया भी तो उसमें तथ्य सारे गलत है,
उनको सारे तथ्य गलत है। आपको नाम आपको नाम सही नहीं पता, वो नौकरी वो रहते कहाँ है, वो जगह आपको नहीं पता, वो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं वो कैसे बनाया है उन लोगों ने, क्या उनकी थिंकिंग थी, वो प्री प्लान्ड था, क्या उनके दिमाग में चल रहा था वो पत्रकार, क्या उनकी खुन्नस थी अजीत अंजुम से। और देखिए इस बारे में अजीत अंजुम ने जो अपना स्टैंड लिया है कि साहब मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा, वो सही है, बिल्कुल ठीक लिया है। ऐसे तो कल कोई हमें आपको भी कहेगा संजय जी, कुछ भी कहने लगेंगे लोग, इसमें तो बिल्कुल सही 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 कदम लिया है उन्होंने। आप उनकी विचारधारा से आप उनकी वो कीजिए, हम भी वीडियो बनाते हैं, मैंने कितने वीडियो बनाए, मैंने अजीत अंजुम जी को पता नहीं क्या क्या कहा, लेकिन कभी पर ऐसी चीज नहीं गई कि जिसे हम जो है डिफेंड ना कर सकें, ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, बिलो द बेल्ट है सारी चीजें, वो निंदनीय है, शर्मिंदा करने लायक चीजें, वो गलत है, मैं उसके बिल्कुल भी।
लेकिन ये पूरा जो ये आपका जो समाज है
लुटियन समाज वो भी बैकवर्ड पर चला गया है
जी, लुटियंस वालों की तो लुटिया उल्टी हो गई है ना, ऐसे निकल गया है मामला,
पूरी तरह से बैकफुट पे चला गया है। और जिस तरह से खड़गे साहब कह रहे हैं कि मैं मैनिफेस्टो लेके डिस्कस करना चाहता हूं, वैसे ये भी जो है वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, रवीश कुमार क्या बोल रहा है और विनोद कापरी क्या बोल रहा है, अजीत अंजुम क्या बोल रहा है, सब ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या कि इनकी जो है
ऐसा है संजय जी, अब ये जो अजीत
बड़ी चोरी पकड़ ली है ऐसा लग रहा है,
ये जो कापड़ी और सब इनकी आप बात कर रहे हैं रवीश कुमार, देखिए अब तो ये लुटियंस मीडिया का ये नैरेटिव खत्म हो चुका, अब तो लुटियंस मीडिया में वो लोग, अब लुटियंस मीडिया में तो उसकी बात करेंगे ना जो किसी चैनल में एडिटर हैं या कुछ लोग हैं इस तरह के, उनकी बात करेंगे आप। अब आप देखिए कि बरखा दत्ता भी तो लुटियंस मीडिया का ही पार्ट थी, अन्ना मलई का इंटरव्यू कर रही है जाके, कल ही मैंने देखा कि राजदीप सरदेसाई ने जो है अजीत पवार का इंटरव्यू लिया है जाके, तो ये भी समझ रहे हैं चीजों को, बदल रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, काम ही नहीं चलेगा उसके बिना, कैसे आप चीजों को अवॉइड कर सकते हैं। बरखा दत्ता ने तो इतनी तारीफ की है उसमें अन्ना मलई की कि मैंने तो अपनी लाइफ में ऐसा कैंपेन किसी को करते नहीं देखा, इतना स्पिरिटेड, और लोग टूटे पड़ रहे हैं हाथ लगाने के लिए, अन्ना मलई को छूने के लिए, कोई बच्चा अपनी तस्वीर दे रहा है, कोई ऑटोग्राफ, कोई सेल्फी, इतना क्रेज, इतनी तारीफ की है उसकी। और ये भी बताया कि देखिए इनका यहाँ का तो नतीजा क्या होगा, जिस दिन उनका अपना कैंपेन खत्म हो रहा है अगले दिन ही उन्हें केरल कर्नाटक भेज दिया गया अन्ना मलई का, ये भी बताया कि इतने पॉपुलर हैं, साउथ के सारे स्टेट कवर कर रहे हैं वो, तो ये लुटियंस मीडिया वाले भी समझ गए हैं कि नैरेटिव कहाँ है और कहानी कहाँ जा रही है।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने एक बार
लेकिन आप ये मुझे बताइए कि अजीत अंजुम जी जो है उन्हें वीडियो बनाना चाहिए निकल के बाहर या नहीं इस तपती दोपहरी में, या वहीं एसी में बैठ के वो करते रहे?
और बनाना चाहिए साहब, ये काम तो हम लोगों का है, हम लोग तो रिपोर्टर हैं, हम लोग तो विश्लेषक हैं, तो ये हम लोग
वो तो फील्ड रिपोर्टर है,
वो तो फील्ड रिपोर्टर है, उनको तो फील्ड में जाना चाहिए।
उनके चैनल की यूएसपी यही है, वो यहीं से चले किसान आंदोलन, यूपी का चुनाव, फलाना ढिमकाना। और मैंने एक बार और एक वीडियो बनाया था, मैंने अजीत अंजुम जी से ये भी कहा था कि यूपी के चुनाव में उन्होंने खूब रिपोर्टिंग की, खूब फील्ड रिपोर्टिंग की, जहां भी गए सपा वाले ये कह रहे हैं, फला वाले ये कह रहे हैं, योगी ये है, मोदी वो है, तो मैंने उनसे कहा भी था भाई, मैंने कहा एक वीडियो पश्चिम बंगाल में जरा टीएमसी वालों के खिलाफ बना के दिखाओ, दूसरा वीडियो बनाने लायक नहीं छोड़ेंगे आपको। ये योगी राज है
ना, वो दूर नहीं रहते, वो खाली दिल्ली के आसपास ही रहते हैं,
विधानसभा चुनाव में आगे नहीं है,
उनकी मार मेरठ से आगे नहीं है,
विधानसभा चुनाव में गए थे संजय जी पिछली बार,
जयपुर आए थे ना,
नहीं वहां पश्चिम बंगाल भी गए थे, किसान आंदोलन जब चल रहा था बीच में छोड़ के गए थे, वहां पे चुनाव उसी दौरान हुआ था, वहां भी गए थे, तो मैंने भी उस समय भी कहा था, मैंने कहा आप यहाँ टीएमसी के समर्थन में बना रहे हो, बीजेपी के अगेंस्ट बना रहे हो, जिसका अभी कोई यहाँ वजूद है नहीं पश्चिम बंगाल में, खासतौर से विधानसभा की अगर बात करें, लेकिन ये जो काम आप यूपी में कर, आप जिस तरह से कर रहे हो, अगर आपने वहां किया होता ना टीएमसी वाले, तो गाड़ी वाड़ी का भी पता नहीं पाता कहाँ गई अजीत अंजुम की, टीएमसी वाले छोड़ते नहीं ने, कि देखो वो कहाँ वीडियो बना रहा है आज, और ये आप यूपी में तो खूब घूमिए, योगी का राज है, राम राज है, बिल्कुल मजे से खूब कहो कुछ भी कहो।
तो आइए फिर आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हमारे राहुल गांधी जी ने तो अपना काम कर ही दिया है, इसीलिए आपको ध्यान है हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा था कि भाई हम इनको जो है वो अभी केस रजिस्टर कर लेंगे, गिरफ्तार नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इनकी आवश्यकता है चुनाव प्रचार में, उन्होंने अपना पूरा काम कर दिया है। और मोदी जी ने उन्होंने जो लूज बॉल दी उसको स्टेडियम के बाहर पहुंचा दिया
जी, बिल्कुल सिक्स, वो जैसे आईपीएल में रिकॉर्ड बन रहा है इस बार छक्कों का, तो वो मोदी जी भी उसी में शामिल हो गए,
और उसी बॉल को डेली बाहर पहुंचा रहे हैं स्टेडियम से, एक ही बॉल को
जी, जी।
तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, हर्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम
जी, नमस्कार।